दर्शन कुमार झा की आवाज में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का वाचन सुनिए। अल्पसंख्यकों की समस्याएं। भारतीय समाज में अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों और भाषाओं से संबंधित लोग निवास करते हैं। भारत में हिंदुओं एवं हिंदी की प्रधानता है। शेष धर्मों एवं भाषाओं से संबंधित लोगों को हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। धर्म एवं भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक समाजों की अनेक समस्याएं हैं। मुख्य समस्या इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने और राष्ट्रीय एकीकरण बनाए रखने की है। अल्पसंख्यकों का अर्थ। अल्पसंख्यकों का अर्थ उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न और कम संख्या में हो। सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षा विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिसकी संख्या राज्य में 50% से कम है। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक मानने का निर्णय राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलंबियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिना जाता है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत के संदर्भ में हिंदी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य भाषाओं को बोलने वालों को तथा एक प्रांत के संदर्भ में उस प्रांत की प्रांतीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को प्रयोग करने वालों को अल्पसंख्यक माना जाएगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग बहुसंख्यक तथा हिंदी भाषी लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अल्पसंख्यक समूहों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। छोटे समूह। साधारणतया एक समाज के ही एक बड़े समूह के बीच कुछ छोटे समूह रहते हैं और ये छोटे समूह अपने को कुछ विशेष बंधनों के द्वारा बांध पाते हैं। व्यवहारिक रूप में यह बंधन प्रजाति या राष्ट्रीयता के होते हैं, किंतु कभी कभी धार्मिक आदि दूसरे सांस्कृतिक तत्व भी इनमें सम्मिलित हो जाते हैं। प्रजातांत्रिक देशों में भी अल्पसंख्यक समूह के लोग उपयुक्त बंधनों के कारण, बहुसंख्यक समूह के वर्चस्व के कारण अपनी संख्यात्मक शक्ति के प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाते तथा अपने को बहुसंख्यक समुदाय से अलग रखते हैं। दूसरा, प्रधान समूह से अलग। अल्पसंख्यक समूह को व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो कि अपने को भारतीय या सांस्कृतिक लक्षणों के कारण समाज के प्रधान समूह या अधिकांश समूहों से अलग कर दिए जाते हैं। तीसरा, उपेक्षा की भावना। धार्मिक, प्रजातीय अथवा राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि के आधार पर भी अल्पसंख्यक समूह परिभाषित किए जाते हैं। प्रायः ऐसे समूहों के सदस्यों में यह भावना विद्यमान रहती है कि अन्य समूहों द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, पूर्ण सहभागिता से वंचित। अल्पसंख्यक समूहों को शारीरिक लक्षणों, भाषा, प्रथाओं अथवा अन्य सांस्कृतिक प्रतिमानों के कारण किसी समाज के प्रभावशाली समूह से अलग किया जाता है। ऐसे उपसमूह से अलग अथवा भिन्न माने जाते हैं और उपयुक्त कारणों से ही वे सांस्कृतिक जीवन में पूर्ण सहभागिता से वंचित रहते हैं। पांचवा, सामाजिक और सांस्कृतिक पृथकत्व को सुरक्षित रखना। किसी विशिष्ट समुदाय या अल्पसंख्यक समूह के व्यक्ति प्रजाति, राष्ट्रीयता तथा संस्कृति के सामान्य बंधनों से आपस में एक दूसरे से बंधे हुए अपनी विशेष तथा भिन्न संस्कृति को कायम रखते हैं तथा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पृथकत्व को सुरक्षित रखती। अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं। अल्पसंख्यक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक अल्पसंख्यक समूह की सदस्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विशेष सांस्कृतिक या शारीरिक लक्षणों के आधार पर हस्तांतरित होती रहती है। दूसरा, एक अल्पसंख्यक समूह किसी ऐसे समय सामाजिक इकाई या समाज का सहघटक होता है जिसका प्रधान घटक कोई बहुसंख्यक समूह होता है। तीसरा, अल्पसंख्यक समूह एक प्रकार का बंद समूह होता है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समूह के सदस्य विवाह जैसे घनिष्ठ सामाजिक संबंध केवल अपने समूह के अंदर ही करते हैं। चौथा, अल्पसंख्यक समूह के सदस्य एक सचेतन इकाई का निर्माण करते हैं और उसके सदस्य आपस में एक दूसरे के विशेष लक्षणों के कारण भावनात्मक आधार पर बंधे रहते हैं। पांचवा, प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह विशेष प्रजातीय, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों से युक्त होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर वे अन्य समूहों से भिन्न होते हैं। अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण के आधार। आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में अल्पसंख्यक समूहों को सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रजातीयता के आधार पर। प्रजातीय अल्पसंख्यक समूहों को प्रजातीय गुणों, शारीरिक विशेषताओं अथवा जैविकीय गुणों के आधार पर विभक्त किया जाता है। जिन लोगों या समूहों के प्रजातीय गुण या शारीरिक बनावट समाज के बहुसंख्यक लोगों से भिन्न होते हैं उन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हबसी या काले लोग। डॉक्टर एम मजूमदार ने भारत की इस प्रजातीय संरचना का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारतीय समाज में अनेकों प्रजातीय तत्वों के सम्मिश्रण से निर्मित हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीयता के आधार पर। कुछ समाजों में भाषा भी अल्पसंख्यक का प्रधान बन जाती है। राष्ट्रीयता पर आधारित अल्पसंख्यकों की भाषा बहुसंख्यक समूह की भाषा से भिन्न होती है। भाषा स्वयं इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि अल्पसंख्यकों की पहचान का प्रधान आधार बन जाती है, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि भाषागत भिन्नता को राष्ट्र संबंधी या अन्य सांस्कृतिक भिन्नताएं अधिक पुष्ट करती है। वास्तविकता यह भी है कि अल्पसंख्यकों के समूह के निर्माण का कोई एकमात्र आधार नहीं होता। भाषा तथा राष्ट्रीयता पर आधारित अल्पसंख्यक समूह के बीच की विभाजन रेखा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होती। तीसरा, धर्म और भाषा के आधार पर धार्मिक भिन्नता अल्पसंख्यक समूह के निर्माण का एक प्रधान आधार है। संसार के विभिन्न समाजों में धार्मिक अल्पसंख्यक समूह विद्यमान है। जब उस देश के बहुसंख्यक लोगों का धर्म एक हो तो अन्य सभी धर्मों के अनुयायी अलग अलग अल्पसंख्यक समूह कहलाते हैं। इसी आधार पर भारत में हिंदू धर्म के मानने वालों का समूह बहुसंख्यक समूह है तथा इस्लाम, सिख धर्म, पारसी धर्म और जैन तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के समूह अल्पसंख्यक हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भी समाज के सदस्यों में पूर्ण समरूपता नहीं होती। समाज के अंदर जन्म, वर्ग, स्थिति, भाषा, प्रजाति तथा धर्म आदि विभिन्न आधारों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं मौजूद रहती हैं। इन विषमताओं से प्रजाति तथा धर्म संबंधी विशेषता एकदम भिन्न तथा अत्यंत प्रभावकारी होती है। अतः अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन विषमताओं को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है। इन विषमताओं के आधार पर किसी भी समाज की जनसंख्या अनेक समूहों में बच जाती है और इन समूहों में जो समूह संख्यात्मक दृष्टि से अल्प या छोटे होते हैं वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य है, अतः हिंदू समूह बहुसंख्यक समूह है तथा मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म अल्पसंख्यक समूह है। इन अल्पसंख्यक समूहों में मुस्लिम धर्म के मानने वालों की संख्या सन 1981 की जनगणना के आधार पर 60,55,71,514 थी। ईसाई धर्म के मानने वालों का समूह 1,51,78,418, सिखों की 1,30,78,146, बौद्धों की 45,19,900 तथा जैनों की 31,92,526 थी। पारसियों की आबादी नगण्य है। इस प्रकार संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में मुसलमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह है। भारत में इस्लाम, ईसाई और पारसियों के धर्म बाहर से आए हैं। बौद्ध, जैन और सिख धर्म हिंदू धर्म में सुधार लाने के प्रयत्नों के आधार पर विकसित हुए हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म को अनेक हिंदुओं ने स्वीकार किया, इसलिए इन धर्मों को मानने वालों में हिंदुओं की सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं मिलती है। परंतु पारसियों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तित नहीं किया, इसलिए न इनकी संख्या बढ़ी न इसमें हिंदुओं की सामाजिक संरचना के तत्व पाए जाते हैं। सुधार लाने वाले आंदोलनों के आधार पर जो धर्म फैले उनमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है। इसका कारण यह है कि बौद्धों ने हिंदुओं की सामाजिक संरचना का सिखों और जैनियों की तुलना में अधिक विरोध किया। सिखों और जैनियों की संख्या अधिक है और इनमें हिंदुओं की सामाजिक संरचना के अनेक गुण मिलते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में प्रजातंत्र की स्थापना की गई और बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को यह भय पैदा हुआ कि बहुसंख्यक लोग उनके हितों की अनदेखी करेंगे। साथ ही उनमें अपनी सुरक्षा का भय भी पैदा हुआ जो कि निराधार और निर्मूल है। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को भी अन्य लोगों की भांति ही कानून द्वारा समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। वे देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। डॉक्टर हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर हिदायतुल्लाह और एमएच बेग कार्य कर चुके हैं। राज्यपाल के पद पर अलियाउ रजग, अकबर अली खां एवं सादिक अली, राजदूत के पद पर MC छागला, लोकसेवा के अध्यक्ष के पद पर AR किदवई, एयर चीफ मार्शल के पद पर इदरीस हसन लतीफ कार्य कर चुके हैं। केंद्र और राज्यों के सांसद, मंत्री और विधायक के रूप में एवं न्यायालयों के न्यायाधीश और भारतीय और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक पदों पर कई मुसलमान कार्य कर चुके हैं तथा वर्तमान में भी कार्यरत हैं। फिर भी मुसलमानों की निम्नलिखित शिकायतें और समस्याएं रही हैं। पहला, विधानमंडलों एवं प्रशासनों के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि। विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मुसलमानों में यह असंतोष रहा है कि उसमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। विभिन्न वर्षों में हुए लोकसभा के चुनाव में सफल मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 52 में 18, 57 में 19, 62 में 23, 67 में 28, 71 में 30, 77 में 31 और 84 में 37 रही। इस प्रकार कुल IS अधिकारियों की संख्या वर्तमान में 3,368 है, जिनमें से 105 अधिकारी मुस्लिम हैं। इन दोनों तथ्यों से स्पष्ट है कि लोकसभा में प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है। दूसरा, उर्दू भाषा का प्रश्न। मुसलमान ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा दर्जा दिलाने की मांग की। कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रचार किया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, जिससे उर्दू भाषा का प्रश्न एक सांप्रदायिक प्रश्न बन गया। तीसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए सिविल कोड होगा। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है जिससे कि समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस दृष्टि से सरकार ने मुसलमानों का बहुविवाह पद्धति एवं तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया। इस बात से अनेक रूढ़िवादी मुसलमान रुष्ट हो गए। उनका कहना है कि मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप करना धर्म विरुद्ध है। सांप्रदायिक दंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक बार सांप्रदायिक दंगे हुए। मेरठ, अहमदाबाद, बिहार शरीफ, रांची, जबलपुर, इंदौर, भिवानी, मुरादाबाद, ब्यावर एवं अलीगढ़ आदि अनेक स्थानों पर सांप्रदायिकता की आग भड़कती रही है। इन दंगों के कारण मुसलमानों में बहुमत संप्रदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुई। पांचवा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संगठन और कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से सन 1965 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। मुसलमान लोग इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं, अतः उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया। भारत में मुस्लिम वोटों की राजनीति। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों में धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में अपनी छवि बनाई। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप 1955 में जनसंघ का उदय हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनसंघ के राजनीतिक आधार पर समर्थन दिया। इन दोनों संगठनों से खतरा महसूस करने के कारण मुसलमानों में यह भावना बलवती हुई कि केवल कांग्रेस ही उनकी रक्षक है। इससे मुस्लिम मतदाताओं ने चुनाव में उसे आंखें बंद कर समर्थन किया। 1952, 57 और 62 तक के चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस अनेक कारणों से मुस्लिम समाज के अधिकांश वोट बटोरती रही, किंतु 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कम होने का झटका लगा। साम्यवादी दलों के बढ़ते प्रभाव ने शिक्षित एवं प्रगतिशील मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यकों एवं मुसलमानों के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का हवा खड़ा किया और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया। 1971 और 1972 के चुनावों में कांग्रेस के अभूतपूर्व विजय ने मुस्लिम मतदाताओं की प्रमुख भूमिका रही। 1975 में थोपे गए आपातकाल में जबरन नसबंदी के कार्यक्रम से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से नाराज हो गया। 1977 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम जैसे अनेक मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध खुलकर प्रचार किया और नवगठित जनता पार्टी को समर्थन देने का अनुरोध किया। 1980 के चुनाव में मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी और कांग्रेस ही अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए। कांग्रेस ही ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को कांग्रेस मजबूत बनाएगी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को सुनिश्चित किया जाएगा, अल्पसंख्यकों को विधि और व्यवस्था तथा रक्षा, कार्मिक सहित सभी सरकारी सेवाओं में नौकरी और उचित अवसर दिए जाएंगे, उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा खास खास क्षेत्रों में सरकारी राजकाज के व्यवहार के लिए दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दी जाएगी। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का एक कारण मुस्लिम वोट नहीं मिलना भी था। मुसलमानों की जनता पार्टी से नाराजगी का मुख्य कारण उनके शासन के दौरान न तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया गया, न ही उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। जनता पार्टी के विभिन्न घटक जैसे लोकदल, समाजवादी गुट ने भी कांग्रेस के साथ साथ जनता पार्टी में आरएसएस के वर्चस्व होने का हवा खड़ा किया और उनके मुस्लिम विरोधी होने की छवि बना दी। नवंबर 1989 के बाद हुए सभी चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस आई दल को अपना मत नहीं दिया। मत न देने के कारण राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु नींव पूजा तथा ढांचा को गिराया जाना था। कांग्रेस आई सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया जिसमें मुसलमानों में कांग्रेस आई के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ। मुसलमान लोग वोट देते समय अक्सर तीन बातों को ध्यान में रखते हैं, भाईचारे की भावना, मुस्लिम राजनेताओं की अपेक्षा, धार्मिक नेताओं की बात स्वीकार करना तथा अल्पसंख्यक समुदाय होने के कारण बहुसंख्यक हिंदू समाज के वर्चस्व से डर कर वे एकजुट होकर मतदान तय करते हैं। ईसाई अल्पसंख्यक। भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर वे ईसाई बने हैं। ईसाइयों की संख्या केरल और दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर की राज्यों में भी उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान समय में ईसाइयों की वफादारी में शंका प्रकट की जाने लगी है और उन्हें विघटनकारी तत्व समझा जाने लगा है क्योंकि उन्होंने लालच और बल के आधार पर हिंदुओं को ईसाई बनाया। हिंदुओं को अपने धर्म से च्युत करने के लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों से आने लगा। उन्होंने कई जनजातीय एवं अछूत और निम्न जाति के लोगों को ईसाई बनाया। ईसाइयों के प्रति शंका का यह कारण भी रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजातियों ने पृथकतावादी आंदोलन को जन्म दिया, साथ ही हिंदू एवं अन्य लोगों में धर्म परिवर्तन की शंका एवं भय को गहरा किया। ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर 1978 को ओम प्रकाश त्यागी ने लोकसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी प्रत्यक्षतः या बलपूर्वक या उत्प्रेरणा द्वारा या प्रवचन द्वारा या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धार्मिक विश्वास से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करेगा और न ही इस तरह के प्रयास के लिए दुष्प्रेरणा देगा। यदि ऐसा करेगा तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। इस विधेयक के विरुद्ध ईसाई समाज के विरोध को देखते हुए इसे पारित नहीं किया गया। सिख अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के बाद सिखों ने समूचे पंजाब सूबे की मांग की। अकाली दल ने आंदोलन प्रारंभ किया और कहा कि सिखों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण होना चाहिए। सन 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। इस नवगठित पंजाब में सिखों की जनसंख्या 61% हो गई। सिखों को केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद तथा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति तथा बूटा सिंह भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। सेना, पुलिस एवं प्रशासन में भी सिखों का प्रतिनिधित्व बहुत है। इन सब के बावजूद सिखों ने एक पृथक राज्य खालिस्तान की मांग की है। अकाली दल के कई नेताओं ने यह धमकी दी है कि भारतीय संघ के अंतर्गत यदि सिख राज्य की स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो वे जन आंदोलन का सहारा लेंगे। खालसा पंथ का कहना है कि सिखों को धोखाधड़ी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। पंथ यह भी कहता है कि भारत के हिंदू बहुमत ने एकजुट होकर इस बात पर जोर देते हुए कि सिख धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है, सिख धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की है और उनकी पंजाबी भाषा को एक बोली मात्र घोषित करके और पंजाब को द्विभाषी प्रदेश बनाकर उनकी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अतः आनंदपुर साहिब में आयोजित शैक्षिक सम्मेलन के मंच से पृथक राज्य की मांग की गई। इस आंदोलन को भारतीय और विदेशों में रहने वाले अनेक सिखों का समर्थन प्राप्त है। यह मांग चिंता का विषय इसलिए बन गई कि इसका नेतृत्व कुछ मुट्ठीभर उग्र तत्वों और आतंकवादियों के हाथों में आ गया है, जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और आए दिन देश के विभिन्न भागों में हिंसा, लूटपाट, बैंक डकैती, सामूहिक आदि की घटनाएं करते रहते हैं। आतंकवादी गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए स्वर्ण मंदिर पर 2 बार सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। जुलाई 1985 में केंद्र सरकार और अकाली दल के मध्य पंजाब समस्या के समाधान के लिए तथा सिखों के घावों को भरने और टूटने को जोड़ने के लिए एक समझौता हुआ, किंतु यह समझौता भी समस्या का समाधान नहीं कर सका है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद सिखों के समर्थन एवं शांति हेतु स्वर्ण मंदिर गए और वहां घुटना टेके, किंतु इसके बाद भी मानसिंह गुट के चुने 7 सदस्यों ने संसद की सदस्यता शपथ लेने हेतु अपनी मांग रख दी और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी उनके सदस्य शपथ नहीं लेंगे। जैन, बौद्ध और ईसाई भारत के अल्पसंख्यक समूह है, किंतु इन्होंने देश की एकता और राजनीतिक दृष्टि से किसी गंभीर समस्या को जन्म नहीं दिया है। भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है। बंगाली बोलने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी भाषा का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ 189 भाषाएं और 544 बोलियां प्रचलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 450 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। संसद में सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है। इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष विद्यमान रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। भाषा के आधार पर ही आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा राज्यों का निर्माण किया गया। डीएमके दल ने द्रविड़ स्थान की मांग की। उर्दू बोलने वालों में भी व्यापक असंतोष रहा है, उनकी संख्या काफी अधिक है किंतु ये देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं, किंतु किसी भी राज्य में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। असम में भाषाई आधार पर आंदोलन हुआ और उन्होंने बंगालियों को असम से बाहर निकालने की मांग की। भाषाई अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राजकीय सेवाओं एवं भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषी लोगों को ही अधिक लाभ मिलेगा। लिपि के प्रश्न को लेकर हिंदी और उर्दू बोलने वालों में विशेष मतभेद पाया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों की यह मांग कि विश्वविद्यालयों आदि में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। दक्षिण के गैर हिंदी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते रहे हैं और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अल्पसंख्यकों का संवैधानिक प्रयास। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में कानून के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। दूसरा, अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु वसूल करने व अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग लेने की छूट दी गई है। तीसरा, अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति को बचाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। चौथा, अनुच्छेद 30 धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने व उसका प्रशासन लागू करने का अधिकार देता है। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने, उसका पुनरावलोकन करने के लिए सरकार ने कई विशिष्ट अधिकारों एवं आयोगों की नियुक्ति की है। सन 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की, जिसका एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होते हैं। यह कमीशन अन्य कार्यों के अतिरिक्त संविधान में किए गए संरक्षण प्रावधानों का मूल्यांकन करने, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुझाव देने, केंद्र एवं राज्य सरकारें की नीतियों को लागू करने, शिकायतें सुनने, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु समय समय पर रिपोर्ट देने का कार्य करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पृथक से एक कमीशन है, जो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए प्रावधानों के बारे में जांच पड़ताल करता है, उससे संबंधित शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। छठा, सन 1983 में केंद्रीय सरकार ने पृथक से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। यह प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों के द्वारा राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह भाग लेने, अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने एवं उनके कल्याण कार्यों की देखरेख करता है। कुछ राज्यों में भी ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को रोकना एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकताओं पर जोर देना, सेवाओं उनकी भर्ती के लिए प्रयत्न करना आदि है। सातवां, सन 1987 में न्यायमूर्ति एच.एच. बेग की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को अनेक सुझाव दिए हैं। उनमें एक सुझाव धर्म को राजनीति से पृथक रखने का है। आयोग का मत है कि सब प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक मांगों को धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा ही सही ढंग से उठाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के संबंध में वे सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए जो राष्ट्रीय एकीकरण समिति ने समय समय पर दिए हैं। समाप्त।